गोमट सार का अध्यापन शुरू हो रहा है। सिद्धम शुद्धम पणिमीय जिनिंद वर्णिमि चंद मकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस परुवणम वोच्छम। जीव द्रव्य की प्ररूपणा को बताने के लिए आचार्य श्री नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने 20 प्ररूपणाओं को माध्यम बनाया है। उनमें से हमारा 7वां चैप्टर अर्थात 7वीं प्ररूपणा चल रही है। 14 मार्गणाओं में द्वितीय मार्गणा है इंद्रिय मार्गणा। इंद्रिय मार्गणा के अंदर आपने इंद्रिय का स्वरूप जान लिया, इंद्रियों के भेद जाने, इंद्रियों के विषय जाने और इंद्रियों का आकार भी जान लिया कि पांचों इंद्रियों का क्या क्या कार्य है और उनका आकार कैसा है। अब चलते हैं 57 नंबर के गाथा पर, पेज नंबर 64, गाथा नंबर 57, 57। नवी इंद्रिय करण जुदा,
नवी इंद्रिय करण जुदा,
अवगादी गाहया अथे,
अवगादी गाहया अथे,
नेवय इंद्रिय सोखा,
नेवय इंद्रिय सोखा,
अणिंद्रियाणंतनाण सुहा,
अणिंद्रियाणंतनाण सुहा।
सामूहिक गाथा पढ़िए। नवी इंद्रिय करण जुदा अवगादी गाहयाते, नैव इंद्रिय सोखा अणिंद्रियाणंतनाण सुहा। नापि इंद्रिय करणयुता अवग्रहादि विग्रहका अर्थे, नैव च इंद्रिय सौख्या अनिंद्रियानंत ज्ञान सुखा। यानी इंद्रिय ज्ञान से युक्त जो संसारी जीव हैं उनके बारे में आपको बताया और उसका वर्णन करने के बाद जो इंद्रियातीत अवस्था में आ गए अर्थात अतीन्द्रिय ज्ञान वाले अरहंत सिद्ध भगवान के लिए निरूपण किया कि जो जीवन मुक्त हैं, जीवन मुक्त किनको कहते हैं? अरहंत भगवान को। जीवन मुक्त मतलब अरहंत भगवान, यानी जीवित भी हैं और आधे कर्मों का नाश कर चुके इसलिए मुक्त हैं और मुक्त होने वाले, निश्चित मुक्त होने वाले जीव हैं, उनको कहते हैं जीवन मुक्त। जीवन मुक्त और परम मुक्त जिनको सकल परमात्मा और निकल परमात्मा के रूप में भी जानते हैं। अनंत परमेष्ठी जो जीवन मुक्त कहलाते हैं वे सकल परमात्मा है और परम मुक्त माने निकल परमात्मा सिद्ध भगवान। तो जीवन मुक्त तथा परम मुक्त जीव इंद्रियों की क्रिया से युक्त नहीं है, उनकी कोई इंद्रिय की क्रिया नहीं होती है तथा वे अवग्रह आदि क्षयोपशमिक ज्ञान के द्वारा पदार्थ का ग्रहण नहीं करते, इसी तरह वे इंद्रिय जन्य सुख से भी युक्त नहीं होते हैं। जो इंद्रियों का सुख होता है, खाने से सुख मिल गया, देखने से सुख मिल गया, सुनने से मिल गया, इन इंद्रिय जन्य सुख से भी जो सहित नहीं है क्योंकि उन दोनों ही प्रकार के जीवों का अनंत ज्ञान और अनंत सुख जो है वो अनिंद्रिय है। अतीन्द्रिय सुख में निमग्न रहते हुए भगवान इसलिए उनको कहा इंद्रिय जन्य सुख जितना भी है उसके साथ दुख भी लगा हुआ है, लेकिन अनिंद्रिय सुख अतीन्द्रिय सुख क्योंकि इंद्रियों की कोई सहायता ही नहीं है, किसी प्रकार का परावलंबन नहीं है, वहां पूर्ण रूप से स्वावलंबन यानी आत्मा ही आत्मा के अंदर स्थित रहता है। स्व स्वम स्वेन स्थितम स्वस्मयी स्वस्मात् स्वस्याविनश्वरम स्वस्मिन् ध्यात्वा लभेत स्वोत्थ मानंदम मामृतम पदम। स्व शब्द को स्व, स्व माने अपना, इस शब्द को सातों विभक्तियों में कहा। स्व स्वम, स्व माने स्वयं, स्व माने अपने को, स्वेन माने अपने द्वारा, स्व स्वम स्वेन स्थितम अपने द्वारा अपने लिए अपने में अपना ही और अपने अंदर ही जो स्वात्मा से उत्पन्न सुख का अनुभव करते हैं, स्वात्मोत मामृतम पदम, वे अमृत ज्ञान के अमृत को प्राप्त करके हुए करते हुए अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त कर लेते हैं। उसमें किसी भी इंद्री का परावलंबन नहीं रहता। इसलिए इस इंद्री मार्गणा की अंतिम गाथाओं के अंदर अतीन्द्रिय सुख की बात करते हुए आचार्य देव ने आपको संबोधित किया कि अरहंत और सिद्ध भगवान के अतीन्द्रिय सुख होता है, वहां पर इंद्रियों का कार्य नहीं रहता। तो इस बात को यहाँ पर कहा गया जीवन मुक्त और यानी कि संयोग केवली 13वें गुण स्थान वर्ती और 14वें गुण स्थान वर्ती जो तीन लोग के अग्रभाग सिद्ध शिला पर विराजमान रहते हैं, इनको ग्रहण किया है। किंतु जो गोमटसार जीव कांड की जीव प्रबोधिनी और मंद प्रबोधिनी नाम की टीकाएं हैं, उन टीकाओं के अंदर इस गाथा का अर्थ सीधे सीधे सिद्ध पर्याय में ही घटित करते हैं, क्योंकि 13वें गुण स्थान में जो सकल परमात्मा अरहंत भगवान है, जीवन मुक्त है, केवली भगवान है, उनकी बाह्य इंद्रियां दिखती हैं और उन इंद्रियों को भी की भी अपेक्षा न रखते हुए इन टीकाओं के माध्यम से कहा कि इसका पूर्ण अर्थ यानी पूर्ण अतीन्द्रिय सुख वो सिद्धों में ही घटित होता है। तो अयोग केवली के अंदर पूरी तरह से घटित होता है। तो ये बात आपको विशेष इन टीकाओं के माध्यम से और इसी पुस्तक के अंदर तत्वार्थ राजवार्थिक के सूत्र को देकर के थोड़ी सी टीका को देकर के बताया है कि द्रवेंद्रियों की अस्तित्व की अपेक्षा से अरिहंतों को पंचेंद्रियों में परिगणित कर लिया है, क्योंकि उनके भी सारे आँख मुंह नाक कान सब कुछ दिखता है, तो इसलिए उनको पंचेंद्रीय जीवों में घटित कर लिया है किसी अपेक्षा से। और सिद्धों में कोई भी इंद्रियां नहीं होती, शरीर नहीं होता है, अशरीरी सिद्धों के अंदर पूर्ण रूप से अतीन्द्रिय सुख घटित होता है। तो इस बात को आपको जानना है। अब अंतिम अंतिम गाथा है इसमें 58 नंबर की, एक इंद्रिय आदि जीवों की संख्या। थावर संख
पिपीलिया
भमर मणु साधिगा सभे दाजे,
भमर मणु साधिगा सभे दाजे,
जुगवार मसंखे जा,
जुगवार मसंखे जा,
नंतानंतानि गोद भवा,
नंतानंतानि गोद भवा।
सामूहिक गाथा पढ़िए।
थावर संख पिपीलिया भमर मणु साधिगा सभे दाजे, जुगवार मसंके जा, नंतानंतानि गोद भवा।
स्थावर संख पिपीलिका भ्रमर मणु साधिका सभे दाये, युगवार मसंख्येया, अनंतानंतानि गोद भवा। यहाँ केवल संख्या को बताया कि स्थावर एकेंद्री जीव जो है, जो पांच स्थावर में बटे हुए होते हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, तो ये स्थावर एकेंद्री जीव, संखादिक दो इंद्री जीव, चीटी आदिक जो तीन इंद्री जीव हैं, भ्रमर आदिक भौरा आदिक जो चार इंद्री जीव हैं, और मनुष्य आदिक जो पंचेंद्री जीव हैं, ये अपने अपने अंतर भेदों से युक्त होकर के असंख्याता संख्यात हैं। हम लोग प्रतिक्रमण में जब पढ़ते हैं ए इंद्रिया जीवा संकेत जा संकेत जा, बे इंद्रिया जीवा असंकेत जा संकेत जा, तो इनकी संख्याता संख्यात भेद हो जा संख्याता संख्यात। और निगोदिया जीवों के लिए कहा अनंत 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 निगोदिया जीव होते हैं। इस प्रकार से आपको जानना है कि त्रस जीव प्रत्येक वनस्पति पृथ्वी जल अग्नि वायु इनको छोड़ करके बाकी संसारी जीव यानी साधारण जीवों का प्रमाण जो है वो अनंतानंत है, और साधारण को छोड़कर बाकी एक इंद्री जीव स्थावर, दो इंद्री, तीन इंद्री, चतुर इंद्रिय, पंचेंद्री, इनमें प्रत्येक का प्रमाण असंख्यात लोक मात्र यानी असंख्याता संख्यात होते हैं। जब अहिंसा व्रत के पालन के लिए मिच्छा में दुकड़म करते हैं तो इन असंख्यात असंख्यात प्रकार के सभी जीवों के हिंसा से विरत रहने के लिए आचार्य देव हम लोगों के लिए, साधुओं के लिए भी, श्रावकों के लिए भी प्रतिक्रमण सूत्रों का निर्माण करते हैं कि आप इनको बोलिएगा कि इन असंख्यात असंख्यात जीवों में से किन्हीं भी जीवों की किसी प्रकार से मन से, वचन से, काय से विराधना हुई हो तो तस्य मिच्छा में दुक्कड़म, वह पाप मेरे मिथ्या हो जाए, अर्थात उन जीवों से मैं क्षमा याचना करके यदि जान अनजान में किसी जीव की हिंसा हो गई हो तो वो हमें क्षमा करें भगवान, मैं उन पापों के लिए, उस जीव विराधना के लिए मिच्छा में दुक्कड़म, मेरे दुष्कृत सब मिथ्या हो जाए। इस प्रकार से कह करके इंद्री मार्गना का समापन किया है कि एक इंद्री से लेकर पांच इंद्री तक के किसी भी जीव का मेरे द्वारा घात ना होने पाए ये भाव है, लेकिन संसार में रहते हुए यदि किसी प्रकार से कोई घात हुआ हो, कोई हिंसा हो गई हो तो वह मेरा दुष्टत मिथ्या हो जाए। अब ये मार्गना तो समाप्त हो गई, इसके सार रूप में आपको जानना है कि हर एक इंद्रिय के कार्य का हम सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों कर सकते हैं। जैसे जिह्वा इंद्री के लिए मैंने आपको बताया था कि जिह्वा इंद्री, सारी इंद्रियां एक एक कार्य करती हैं और जिह्वा इंद्री क्या करती है, दो काम करती है। जिह्वा इंद्री के दोनों ही कार्य ऐसे हैं कि जिनके द्वारा जीव अर्थ अनर्थ दोनों करता है। समझो सटरस त्याग करके, नीरस भोजन करके यदि अपनी साधुचर्या का पालन करते हैं तो हमें तप का फल मिल जाता है, तप और व्रतों का फल मिलता है और हम मोक्ष मार्ग में अग्रसर होते हैं। यदि अभक्ष भक्षण करके और जो कुछ जिह्वा इंद्री ने चाहा उसके स्वाद की लोलुपता में हमने उसका दुरुपयोग किया तो हम चारों गतियों में, नरक गति तक में भ्रमण करके दुख उपार्जन कर सकते हैं। इसलिए एक कविता के माध्यम से आप इसको जाने, यदि भाषा हितमित प्रिय होती, यानी बोलने से भी बहुत सारे अनर्थ होते हैं, यदि भाषा हितमित प्रिय होती जग में जंजाल ना हो पाता, जीवन कितना मधुरिम होता, सुख दुख और संताप ना हो पाता। दुख और संताप, जरा सा एक शब्द बुरा बोल दिया खलबली मच जाती है और लड़ाई झगड़े दंगे होने लग जाते हैं, मारने मरने की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। सब इंद्रिय के एक एक कार्य दो कार्य करती है रसना, इन दो कार्यों के कारण ही होता उत्थान पतन कितना। तीखे मीठे ताने बाने, तीखे मीठे ताने बाने का वचन प्रहार ना हो पाता, जीवन कितना मधुरिम होता, दुख और संताप ना हो पाता। किसी को ताने देते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी को अपमानजनक शब्द बोलते हैं तो इससे दुख का जंजाल बचता है और वचनों के प्रहार से हमेशा बचना चाहिए। पुद्गल के शब्द बने सारे, शक्ति बस जीव समाता है और गुस्से में आपे से बाहर हो क्या क्या बकता जाता है। जब गुस्सा आता है तो ये पता नहीं रहता कि रसना इंद्री के द्वारा हम किस अनर्थ को करने जा रहे हैं। तो मित वक्ता पापों से बचना, मित वक्ता पापों से बचता, शक्ति का ह्रास न हो पाता, जीवन कितना मधुरिम होता, दुख का जंजाल ना बिच पाता। शब्दों का चक्र व्यूह इतना बस उसमें उलझ रहा मानव, तूने ऐसा क्यों कह डाला, ये कहकर बन जाता दानव, तूने मुझे गाली दी है तो बस उस गाली, अगर तूने एक तमाचा मारा है तो मेरे दो तमाचे खाने के लिए तैयार है, ऐसी बदले की भावना लोगों के अंदर आ जाती है। शब्दों का चक्र व्यूह इतना बस उसमें उलझ रहा मानव, तूने ऐसा क्यों कह डाला, ये कहकर बन जाता दानव। नहीं घटती हरदम घटनाएं, तिल का भी तार न हो पाता, कहते ना तिल का तार बन गया, तो नहीं घटती हरदम घटनाएं, तिल का भी तार ना हो पाता, जीवन कितना मधुरिम होता, दुख और संताप ना हो पाता। वाणी ऐसी बोलो बंधु, रसना इंद्रिय की बात बता रही हूँ आपको, खाने की बात तो अलग ही है लेकिन बोलने से भी कितने अनर्थ हो जाते हैं। वाणी ऐसी बोलो बंधु, शत्रु न कोई बनने पाए, फिर भी यदि कोई रूठा हो चिरकाल न हो रहने पाए। यदि हमारे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो तो चिरकाल तक वो उसमें ना उलझने पाए, उसके पहले क्षमा याचना करके अपने शब्दों से उसको शांत करें। ऐसा जो करता है उसके उलझन का विकास ना हो पाता और जीवन कितना मधुरिम होता, दुख और संताप ना हो पाता। शक्ति यदि संचित करना है, शक्ति यदि संचित करना है, जितना कम बोलो अच्छा है। इसीलिए साधु जन ज्यादा से ज्यादा मौन रखते हैं, जितना कम बोला जाएगा उतनी वचन शक्ति आएगी। शक्ति यदि संचित करना है, जितना कम बोलो अच्छा है, कम खाओ थोड़ा गम खाओ, ये सूत्र बहुत ही सच्चा है। इसको अपनाए बिन प्रियवर जग से उत्थान न हो पाता, जीवन कितना मधुरिम होता, दुख और संताप न हो पाता। अब भी है समय चेत जाओ, अब भी है समय चेत जाओ, मत कहे सुने पर पछताओ। अब भी आगे जितना बोलो, चुन चुन कर मधुर वचन बोलो, मृदुता जिन बाह्य वस्तुओं से मुख का श्रृंगार न हो पाता, मृदुता बिन बाह्य वस्तुओं से मुख का श्रृंगार न हो पाता, जीवन कितना मधुरिम होता, दुख और संताप न हो पाता। अंतिम पद लिखा गया, कथनी करनी में ना बदले तो केवल वाक जाल समझो। यदि कथनी करनी में नहीं बदली तो समझो वचनों का जाल है। हम खुश कर सकते हैं किसी को लेकिन अपने आप पर कुठारा घात हो जाता है। कथनी करनी में ना बदलो तो केवल वाक जाल समझो, जैसी कथनी वैसी करनी उससे ही धर्म लाभ समझो। केवल कहना सुनना जब तक, तब तक कल्याण न हो पाता, जीवन कितना मधुरिम होता, दुख और संताप न हो पाता। तो इसका सार क्या है, मुख का चाहे कितना श्रृंगार कर लें, आप फेशियल करा लें, आप लिपस्टिक लगा लें, आप तरह तरह के श्रृंगार कर लें, लेकिन जिह्वा का श्रृंगार, मुख का श्रृंगार क्या है, सत्य वचन बोलना, हित मित प्रिय वचन बोलना, और अपने वचनों से कभी कोई लड़ाई झगड़ा ना होने पाए। धर्म पर संकट आ रहा है कहीं तो वहां पर कोई झूठ भी बोला जाता है तो सत्य कहलाता है। महानुभाव ये आप जरूर ध्यान रखना, आचार्य समंत भद्र स्वामी के शब्द हैं कि स्थूल मलिकम न वदति न परान वादयति सत्यमपि विपदे यत् तत् वदन्ति संता स्थूल मृषावाद वै रमणम। वहां कहा गया कि ऐसा सच भी ना बोलें कि किसी प्राणी की हिंसा का पाप लग जाए। कोई कसाई जा रहा है और गाय आगे गई है, यदि किसी साधु से पूछा जाता है क्या इधर गाय गई है, यदि उस समय कहा गया हाँ हाँ अरे इधर चले जाओ इधर गई, तो वो सच जो है महा झूठ के बराबर है, क्योंकि प्राण घातक हमला होने वाला है उस गाय के ऊपर। तो ऐसा सत्य भी जिससे विपत्ति आ जाए, सत्यमपि विपदे, विपत्ति आने वाले सत्य को भी झूठ में शामिल किया है, ये आप ध्यान रखना। तो इंद्रिय मार्गना की सार्थकता आप सबको समझनी है। रसना इंद्रिय क्या बताया, चक्षु इंद्रिय से आप सिनेमा आदि फिल्मों को देखते हैं जब, तो उससे उसका दुरुपयोग होता है। देखो चक्रवर्ती ने इसी अयोध्या नगरी से अपने महल की छत से सूर्य के बिंब में, सूर्य बिंब के अंदर जो जिन मंदिर बना है वहां के अकृत्रिम चैत्यालय में स्थित भगवान का दर्शन किया था। समझ जाओ आप कि संसार के अंदर सबसे ज्यादा चक्षु इंद्रिय का विषय चक्रवर्ती के पास होता है। चक्रवर्ती की चक्षु इंद्रिय के अंदर इतनी शक्ति होती है कि जब सूर्य पहली गली में आता है तो अयोध्या नगरी के ऊपर रहता है और चक्रवर्ती अपने महल की छत से उस सूर्य बिंब के अंदर जो जिन मंदिर बना है उसमें विराजमान साक्षात भगवान के दर्शन करके अपनी चक्षु इंद्रिय को पवित्र बना लेते हैं। ऐसी पवित्रता अपनी इंद्रियों के सदुपयोग करने से हमें भी प्राप्त हो, यही आपके इंद्रिय मार्गना समझने का सार है। कल से काय मार्गना को प्रारंभ करेंगे, ध्यान रखना 28 फरवरी को इस गोमठ शास्त्र जीव कांड की 87 गाथाओं की परीक्षा होगी और आगे संस्कृत व्याकरण का अध्ययन 14 फरवरी बसंत पंचमी के दिन से शुरू किया जाएगा। आप सब लोग जो नंबर दिए गए हैं उन पर संपर्क करके और पुस्तकें निःशुल्क पुस्तकें दी जाएंगी, आप सबके घर तक पहुंचेंगी, इसलिए पोस्टल एड्रेस भेज करके पुस्तकें मंगा लें। जय लो द्वाद सांग मई जिनवाणी माता की जय। और अब